केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने। बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की,
यदि परम पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की।
अपन ने पिछले दिनों कर्म सिद्धांत समझा है, आज उस कर्म सिद्धांत का उपसंहार कर रहे हैं अपन। हमने कर्म सिद्धांत से ये बात समझी कि हमें हमेशा भले कर्म करना चाहिए। जब जब भी हमें भले और बुरे कर्मों का चुनाव करना पड़े तो हमें भले कर्म, श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। भले कर्म या श्रेष्ठ कर्म कौन से कहलाते हैं? पूजा करना, स्वाध्याय करना, दान देना, धर्म ध्यान करना, ये सब भले कर्म कहलाते हैं। लेकिन इतने ही परिभाषा नहीं है, वे सब कर्म भले कर्म हैं जिससे कि स्वपर कल्याण होता हो, और वे सब कर्म खोटे हैं जिनसे दूसरे का और स्वयं का अहित होता हो। ये भले और बुरे का विभाजन है। स्वपर कल्याण की भावना से किया गया कर्म ही श्रेष्ठ कर्म है, वरना राम की मृत्यु के लिए रावण ने भी 16 दिन तक शांतिनाथ भगवान की पूजा करी थी, सो वो भला कर्म नहीं है, वो खोटा कर्म है। ये इसलिए मैंने कहा कि स्वपर कल्याण की भावना से किया गया कर्म ही श्रेष्ठ कर्म है, उसी के द्वारा हमें पुण्य का संचय होता है। ये हमने कर्म सिद्धांत से सीखा। दूसरी चीज, भले कर्म को जब मन में आवे तो तुरंत कर लेना चाहिए, कल पर टालना नहीं चाहिए, क्योंकि कलयुग में बैठे हैं और हमेशा अच्छे कार्य करने के लिए धीरे धीरे मन में कमी ही आती जाएगी। ही यमान चारित्र है अपन सबका, वर्धमान चारित्र नहीं है। वर्धमान चारित्र उनका जिनका होता है, उनके आज जितने अच्छे विचार हैं अगले क्षण उससे अच्छे होने वाले हैं, नियम है। और हीमान चारित्र वाले का यह है कि आज जितने अच्छे विचार हैं संजा होत होत उससे खराब होना ही है, पक्के में है। वो उसका पुरुषार्थ है कि वो अपने पुरुषार्थ से और अच्छे परिणाम बना ले, वे अलग बात है, लेकिन उसके हीमान चारित्र होने की वजह से जिस क्षण में दीक्षा लेते हैं उस क्षण में जितना वैराग होता है अगले क्षण उतना ही रहा आवे, ये बहुत कठिन है। जिस क्षण व्रत नियम संयम लिया जाता है उस क्षण की विशुद्धि इतनी अधिक होती है कि उतनी फिर जीवन पर्यंत मेंटेन करना बहुत कठिन। उतनी विशुद्धि, उतने लब्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान। तो ये कर्म सिद्धांत में दूसरी बात ध्यान रखने की है कि श्रेष्ठ कर्म स्वपर कल्याण की भावना से कर्म करना है, लेकिन कर्म जो अच्छे हैं उनको कल पे नहीं डालना है, नहीं तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात कि कर्म हमेशा भले करना है तो निरंतर करते रहना। आज कर लिया कल नहीं करेंगे तो आदत नहीं पड़ेगी, और भले कर्मों की आदत नहीं डालेंगे तो भले कर्म चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुरे कर्मों की आदत हमारी अनादिकाल की है, उसको अगर तोड़ना है तो भले कर्म की आदत डालना पड़ेगी, और किसी भी चीज की आदत तब पड़ती है जबकि उसको लगातार किया जाए। तो निरंतरता होनी चाहिए भले कर्म करने की। आज थोड़ा कर लिया, दो चार दस दिन बाद फिर करेंगे, ऐसा नहीं। सुबह उठे तो भगवान का स्मरण, दोपहर में काम कर रहे हैं तो भगवान का स्मरण, सोने जा रहे हैं तो भी भगवान का स्मरण। जैसे कि नदी जहां से उद्गम से निकलती है, अगर रोज ना बहे तो कभी भी सागर तक नहीं पहुंच सकती, रोज बहती है, एक क्षण भी नहीं रुकती, तब जाके सागर में पहुंचती है। ठीक इसी तरह से जब हम शुभ कर्म रोज रोज करेंगे, एक क्षण भी ऐसा ना गुजरे जबकि हमारे कर्म स्वपर कल्याण की भावना से ना हो। देखो भैया, जीवन को अच्छा बनाना है, अपना कल्याण करना है, इतना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। कर्म सिद्धांत समझने का हमारा तभी हमको लाभ मिलेगा कि हम स्वपर कल्याण की भावना से करें, जिस समय मन में आया उसी क्षण कर लें, लगातार करें। और आखिरी पॉइंट जो मैं सोचता हूं कि हमारे शुभ कर्म की, श्रेष्ठ कर्मों की आदत बहुत मजबूत हो, इतनी अधिक मजबूत हो कि बुरे कर्म का अवसर आने पर भी हम बुरा ना कर पाए। इतनी बातें संक्षेप में, इन सबको अपन बहुत डिटेल में रोज समझ चुके हैं, पर संक्षेप में अगर किसी ने पुरानी चर्चा नहीं भी सुनी तो उसके हाथ में भी कुछ रह जाएगा कि हाँ, कर्म सिद्धांत से ये बात अपन को सीख लेनी चाहिए। ऐसी मजबूत आदत हो जाए भले कर्म करने की, पूजा करने की ऐसी आदत है हमारी कि उसके बिना फिर खाना नहीं, हमको इच्छा नहीं होती खाने की कि आज तो पूजा कर ही नहीं पाए, आज तो मंदिर हम गए ही नहीं, आज कैसे हम बाकी काम कैसे कर ले, हमसे नहीं हो सकता, आज तो हम पहले मंदिर जाएंगे फिर भोजन करेंगे। पहले जो है यह इतनी मजबूत आदत रहती थी कि और दूसरे काम होते ही नहीं थे, अरे वो तो सब पाप के कारी है, मैंने तो आज मंदिर में धर्म ध्यान कर ही नहीं पाया, आज तो सब इसी काम में लग गए, ऐसा भाव आता क्या अपने मन में? शुभ कार्य करने की इतनी ललक अपने मन में आ जावे कि अगर वो उसमें थोड़ी कमी हो जाए तो लगे कि नहीं, बाकी काम तो हमें अभी नहीं करना, हम तो पहले अपना वही मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ये हमारा पहले आवश्यक है। ऐसी ललक हमारे भीतर, कहते हैं कि सुकरात के एक शत्रु ने सबसे कहा था कि मैं सुकरात को और उसका जीवन ले लूंगा, जब तक उसे मार नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तो मालूम सुकरात हंस करके सबसे क्या कहते थे, और मैंने भी तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि अपने शत्रु को मित्र नहीं बना लूंगा। शत्रु कहता था कि मैं इनको मारे बिना नहीं रहूंगा, तो वो हंस के कहते थे हर एक से कि मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा तब तक जब तक कि इसको अपना मित्र नहीं बना लूंगा। भैया, जिसके भीतर ऐसे भले परिणाम हैं, वही कार्यों को और परिस्थितियां विपरीत होने पर भी और हम शुभ कार्य को ना छोड़ें, ये हमारी ललक कहलाएगी, ये हमारी श्रेष्ठ कार्य करने की दृढ़ता कहलाएगी। तो ऐसी दृढ़ता भी होनी चाहिए। अब एक बचा हुआ है, उच्च गोत्र कैसे बंधता है और कौन से कर्म हैं जिनसे कि अंतराय बंधता है, और भगवान ने सब अंतराय कर्म को नष्ट करके क्या प्राप्त कर लिया है, हम भी वैसा प्राप्त कर सकते हैं। इतनी चर्चा और अपन कर ले। तो कल अपन ने समझा था कि परात्म निंदा प्रशंसे सत् सद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य, और तद विपर्ययौ नीचैर वृत्तिनुत्सेकौ च उत्तरस्य। उत्तरस्य मतलब उच्च गोत्रस्य, उच्च गोत्र के बंध के कारण कौन से हैं? तो कहते उससे विपरीत, अपनी तो निंदा करना, दूसरे की प्रशंसा करना। और नीचैर वृत्ति, नीची वृत्ति, अब नीची वृत्ति में तो अच्छा अर्थ नहीं लगता कि क्या मतलब होगा, पर बड़ा बढ़िया दिया है अर्थ, गुणेशु उत्कृष्टेशु विनयेन अवनति नीचैर वृत्ति, अपने से गुणों में जो अधिक हैं उनके प्रति विनय से हमेशा झुकते रहना, यही नीची वृत्ति है। नीची वृत्ति मतलब झुकने की वृत्ति। जिस अपन ने अगर उच्च गोत्र पाया है, उच्च कुल में पैदा हुए हैं, तो इसका मतलब है अपन ने पहले गुणवान लोगों के प्रति बहुत विनय करी होगी, मन वचन काय से उनके प्रति अपने मन में विनय का भाव रहा होगा, अपन झुकते रहे होंगे। आज अपन देख लें कि अपन कितनी अकड़ अकड़ के चलते हैं। जरा सी कोई चीज उपलब्ध हो जाती, हम तो ऊंचे कुल के हैं, ऐसी अकड़ आ गई, और जब जी ऊंचा कुल पाया था जब ऐसी अकड़ नहीं थी। इसको पाने के लिए अकड़ नहीं कर सकते, इसको पा करके अगर अकड़ेंगे तो फिर नीचे ही जाएंगे। हाँ, ये ध्यान रखना, ये कह रहे हैं यहां पर, अपने से अधिक गुणवान के प्रति हमेशा विनय का भाव होने से ऊंचा कुल मिलता है, और ऊंचा कुल मिल जाने के बाद बाकी सबको नीचा समझना, तो ये अपने ही नीच गोत्र के बंध का उपाय है भैया, अपने हाथ से, ये कहना चाह रहे। और अनुत्सेका तो कहते अनाहंकारता अनुत्सेका, अभिमान न होना, बहुत बड़ी चीजों की उपलब्धि हो जाने पर, ऊंचा कुल मिल जाने पर, अच्छी जाति होने पर, अच्छा ज्ञान होने पर, अच्छी तपस्या होने पर, सब चीजें और दूसरों से श्रेष्ठ होने पर भी जरा भी अभिमान नहीं है। असाधारण होने पर भी जो साधारण लोगों की तरह रहा है वही तो उसकी असाधारणता है। कोई व्यक्ति असाधारण होने से असाधारण नहीं होता, जो असाधारण होने की कोशिश में है वो बिल्कुल साधारण ही रह जाता है, और जो व्यक्ति असाधारण होकर के भी साधारण आदमी की तरह व्यवहार करता है वही तो उसका महापुरुषपना है। जितनी जीवन में सरलता है, जितनी विनय है, उतना ही हमारा जीवन धीरे धीरे ऊंचा उठेगा। हमारा कुल तो कौन सा है, हम तो तीर्थंकर के कुल के हैं, हम तो इक्ष्वाकु वंश के भगवान ऋषभदेव की परंपरा के हैं, उस कुल का गौरव होना चाहिए। ये छोटे मोटे कर्म के उदय में मिलने वाले कुल गोत्र इत्यादि का अहंकार करने से क्या होने वाला है, ऐसा विचार करना चाहिए। हम तो अपने केवल ज्ञान का गौरव करेंगे, अरे ये छोटा सा छह उपशम ज्ञान मिल गया उसका अहंकार करने से क्या मतलब है, अरे हमारा रूप तो ज्ञान स्वरूप ही है, इस शरीर के गोरे काले रूप से मैं क्यों अभिमान करूं, ऐसा विचार आना चाहिए। तब जो है ये अहंकार से रहित अवस्था कहलाएगी, तब जाकर के उच्च गोत्र का बंध होगा। और भी बहुत से कारण दिए हैं, दूसरे की निंदा नहीं करना, दूसरे से ईर्ष्या नहीं करना, दूसरे की हंसी नहीं उड़ाना, धर्मात्माओं की विनय पूजा करना, अन्य लोगों, ये सब उच्च गोत्र के कारण। धर्मात्मा की जितनी विनय करेंगे उतना अधिक हम ऊंचे उठते जाएंगे। और कह रहे हैं कि अन्य जनों से जो दुर्लभ महानताएं हैं उनको प्राप्त कर लेने पर भी अभिमान नहीं करना। यशपाल जी ने हमको सुनाया था कि गांधी जी से हम मिलने गए, बेटी बहुत लगी थी उनकी, 4 साल की बेटी थी, हम बापू से मिलेंगे, बापू तो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। अब दिल्ली के अंदर और बापू की वो शोभा यात्रा मतलब पद यात्रा में वो जा रहे थे, हजारों लोग उनको घेरे हुए चले जा रहे हैं, और ये यशपाल जी कहते हैं कि हम अपनी 4 साल की बेटी को लिए किनारे पर खड़े। अब कौन धर देखने वाला इतनी भीड़ में, किसको कौन देखता है, सामान्य व्यक्ति को तो और कोई नहीं देखेगा, कोई विशेष हो तो बात अलग है। पर कहते हैं कि सामने से गांधी जी जैसे ही निकलने को हुए, बेटी बहुत जोर से चिल्लाई, अरे बापू हम तो यहां खड़े हुए हैं, आप हमसे तो मिले ही नहीं। 4 साल की बेटी, और बापू का ध्यान चला गया। तो कहते हैं कि इतने महान होने के बाद भी मेरे ख्याल से तो यही महानता है कि सारी भीड़ को हटाते हुए उसके पास तक आए और आकर के जैसे अपन बच्चों को नहीं कहते थे भाव ऐसा है, प्यार से कह देते हैं ऐसा, तो ऐसे उसके पास जाकर के दोनों हाथ करके और भाव ऐसा कर दिया, वो खिलखिला के हंस पड़ी। बापू भी खुश और फिर हजारों की भीड़ में फिर से चले गए। लेकिन दो मिनट के लिए उतने छोटे से सोच सकते थे कि मैं इतना बड़ा, इतने से के बुलाने से कौन है, ना जान ना पहचान, और ये ऐसे बुला रहे हैं, नहीं भी जाते। लेकिन महापुरुष की प्रवृत्ति ऐसी ही होती, जो जितना महान है वो उतना ही सबसे प्रेम भाव रख करके सबको अपने जैसा मान करके चलेगा। ये तो हमारा अहंकार है कि हम अपने को ऊंचा मानते हैं और बाकी सबको शुद्र मानते हैं, नीचा मानते हैं। नहीं भैया, अगर अपने को ऊंचा बनना है तो ऊंचा काम यही है, ऊंचा काम है। झुकने से कोई नीचा नहीं होता, झुकने से ऊंचे हो जाते। दिखने में आता कि जी तो चरणों में डले हैं, मनो ध्यान रखना कि जितने चरणों में भगवान के डले उतने ही भगवान बनने की रास्ताएं तय कर ली अपन ने। मैंने पर्वत के चोटी पर पहुंचकर कहा कि मैं बहुत ऊंचा हूं, पर्वत में ने कहा कि मैं तो किसी के सिर पे चढ़ के ऊंचा नहीं हुआ हूं। मैं पर्वत की चोटी पर पहुंचकर सोचता हूं कि मैं पर्वत से ऊंचा हो गया हूं, तो पर्वत कहता है कि मैं तो किसी के सिर पे चढ़ के ऊंचा नहीं हुआ हूं, तो मुझे अपनी भूल का एहसास होता है और मेरा माथा पर्वत के चरणों में झुक जाता है। तब पर्वत कहता है कि अरे तुम्हारा ये झुका हुआ माथा मेरे शिखर से भी ऊंचा हो गया, क्योंकि मुझे तो झुकने ही नहीं आता। बताइए आप, ये स्थिति है। झुकने से अपन को लगता है अपन झुक जे हैं तो लो छोटे न हो जाए, नहीं। जो जितना अधिक विनम्र है, जो जितना अधिक निष्कषाय है, वो उतना ही ऊंचा है भैया। ऐसे उपाय से अपन चाहें तो उच्च गोत्र बांध सकते हैं, बांध ही होगा अपन ने, जब तो अपन को ऐसा कुल मिला जहां पर की धर्म की परंपरा है, रत्नत्रय की परंपरा है, व्यसन से मुक्त अपन सहज रूप से हैं। जिसके परिवार में व्यसन ना होता हो तो उसको तो विरासत में मिला है वो, हाँ, फोकट में नहीं, तो बहुत मेहनत से मिलता है। बहुत मैंने भाव बनाना पड़ेंगे, अलग चलना पड़ेगा, जैसे वर्णी जी के यहाँ वर्णी जी को अलग से अपना सब कुछ करना पड़ा, उनके संस्कारों में नहीं था। जैसे मलेच्छ खंड से राजा आते हैं, उनको आरी खंड में आकर के वर्षों के पुराने संस्कार तोड़ करके फिर वो मुनि बनते, तो कहते उनकी विशुद्धि बहुत होती। अपन को तो विरासत में मिला है, उसका लाभ लेना चाहिए। और आखिरी है विघ्न करणम अंतरायश, विघ्न करना अंतराय है। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये पांच प्रकार की चीजें हैं। इन सब में विघ्न डालने से अंतराय कर्म खुद को बनता है। दूसरे के कामों में अंतराय डालने से खुद अपने जीवन में अंतराय, अंतराय का मतलब बाधा, विघ्न उपस्थित हो जाना। एक तो कर्म का उदय और दूसरा ये जो मुनि महाराज जी वगैरह को अंतराय आता है, वो अलग अंतराय है, वो भी अंतराय कर्म के उदय में आता है। अंतराय को इसलिए रहस्य माना है, कब आ जाएगा पता नहीं। दान देने की इच्छा होते हुए भी दान नहीं दे पाना, ये दानांतराय है। मैं इस चीज का भोग करूं, इस चीज का सेवन करूं, ऐसी भावना होती हुई सेवन नहीं कर पाना। मैं ये वस्त्र जो उपभोग की सामग्री है, वस्त्र आभूषण, मैं इनको धारण करूं लेकिन नहीं धारण। रोग ऐसा हो गया कि कपड़ा नहीं लगा सकते शरीर से, उधरे हैं भंडरिया में एक से एक बने बनाए। हाँ, उपभोग अंतराय कर्म है, कर्म का उदय है, भावना होते हुए भी नहीं। दान, लाभ, मैं इस चीज को प्राप्त करूं, प्राप्त करने की इच्छा होते हुए प्राप्त नहीं कर पाना, ये लाभांतराय। और वीर्यांतराय, अपने कल्याण के लिए मैं कुछ करूं ऐसी भावना होते हुए भी अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं कर पाना, ये वीर्यांतराय है। मंदिर जाने की बहुत इच्छा है लेकिन जा ही नहीं पाते, धर्म करने की बहुत इच्छा है लेकिन कर ही नहीं पाते। इतना तीव्र वीर्यांतराय कर्म का उदय हो सकता है कि सब एक तरफ रखा रह जाता। ये बंधता कैसे है ये ध्यान रखना। इसका विचार अपन को आवश्यक है, और इसके नष्ट हो जाने पर भगवान को क्या वैभव मिलता, तो कहते अनंत प्राणियों पर अनुग्रह करने की सामर्थ्य कैसे मिलती है, दानांतराय के क्षय हो जाने। भगवान अनंत प्राणियों का कल्याण करते हैं, क्षुद्र जीवों पर भी उनकी कृपा बरसती है, एक इंद्री दो इंद्री जीव को मारना नहीं, ऐसा उपदेश देते हैं, ऐसा उपदेश दे करके वे उनकी भी रक्षा करते। देखो उनका भी उपकार है, जो कान से सुन पाते हैं उपदेश उनका तो उपकार है ही, जो कान से उपदेश नहीं सुन पाते हैं उनकी रक्षा का उपदेश दे दिया कि उनकी रक्षा करना, ये उनके ऊपर उपकार हो गया। इस तरह प्राणी मात्र के अनुग्रह करने वाली अभयदान की स्थिति इसी कर्म के अभाव में उत्पन्न होती है। भगवान के शरीर में उज्जवल परमाणु आकर के इकट्ठे होते हैं, उनका कहना चाहिए सौंदर्य केवली भगवान का देखने लायक शरीर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्यों? उनके जो है लाभांतराय का क्षय हो गया है, दान लाभ, और उनके जो पुष्प वृष्टि इत्यादि अतिशय होते हैं वो सब भोगांतराय के क्षय हो जाने से होते हैं। उनके समोशरण का वैभव, आठ प्रातिहारी, सिंहासन, छत्र, चमर, भामंडल, भारी, ये सब क्यों होते हैं? उपभोगांतराय का क्षय हो जाने से और अनंत बल की प्राप्ति होती है, वीर्यांतराय के क्षय हो जाने से। अपन ने आज तक इन कर्मों का कभी क्षय ही नहीं किया, अपन तो निरंतर बंद ही करते हैं, और कैसे करते हैं? तो कहते दूसरे को कोई दान दे रहा हो, अरे काय को दे रहे हो, क्या रखा है इसमें, ऐसा कह करके उसे दान देने से रोक देना, इससे दानांतराय का बंद हो जाता है। लिखते हैं प्रवर्जित कृपण दीन अनाथ वस्त्र पात्र प्रतिशय प्रतिषेध क्रिया। अरे जे तो इनने तो भोजनों के लाने आए, दीक्षा ले ली है, ज्ञान तो है ही नहीं है, तुम काहे को इनको आहार दे रहे। लिखी है ग्रंथों में कि अगर ठीक आहार न दे हो तो कुभू भूमि जाओगे अपात्र को दान देने से। तो वो दान देने जा रहा था, उसको आपने इस तरह मिथ्या भाषण, ये मिथ्या उपदेश है, ऐसा मिथ्या उपदेश दे करके उसको दान से च्युत कर दिया, आपने स्वयं दानांतराय कर्म बांध लिया। अरे अबे तो इतनी चौका लगे हैं पांच सात, तुम काहे को लगा रहे, अबे पहले हो तो जान दो फिर लगाइयो। अब उसके हो सकता है कि उसी समय उसके उसके लिए दान देने का भाव आया है और पांच दिन बाद न बनेगा भाव, तो कुछ कह नहीं सकते। एक राजा साहब थे जिनने मालूम क्या किया था, मास उपवासी मुनि महाराज आहार को आ रहे हैं, हम ही अकेला लगाएंगे चौका, और कोई नहीं लगाना, हमारे यहां होंगे, एक लगेगा तो ये आएंगे ही अपने आप, उसी में आएंगे, जाएंगे कहां है, ऐसा विचार था उनके भीतर। लेकिन करवा नहीं सकते आप, एक नहीं 25 लगे हों तो नहीं करवा सकते। हाँ तो आ रहे थे महाराज, और उतने में और राजा पड़गाने खड़े हैं और हाथी बिछल गया, और महाराज अंतराय मान करके वापस लौट गए। एक महीने बाद फिर आए, राजा ने फिर कहा कि मेरे ही अकेला लगेगा और किसी का नहीं लगेगा। अब की बार राजा के महल की छत टूट करके गिर गई, पुनः अंतराय मान करके वापस चले गए। तीसरे माह पुनः आए महाराज, तब सारी जनता हाथ जोड़े खड़ी के हे भगवान ये कैसा राजा है, मुझे हम सबको शावकों को तो मना कर देता है और खुद इसके यहां हो नहीं रहे, इस बार अच्छे से हो जाएं। लेकिन जैसे ही वो महल में पहुंचने लगे, महल में अग्नि प्रज्वलित हो गई। महाराज तीसरे माह वापस लौटने लगे, उनके कानों में ये शब्द पड़ गए कि इस राजा ने ऐसा किया है, अपार तपस्या के फलस्वरूप क्रोध के वशीभूत होकर निदान बंद कर लिया कि इसी का पुत्र होकर इसे मारूं। कुणिक का जीव क्षणिक के पैदा हुआ था, ध्यान रखना, ये वही घटना है पूर्व जीवन की। किसी के भी दान के भाव में बाधा न डालना, उत्साह बढ़ाना कि बहुत अच्छा आप तो करो, आप तो दो, जब आपकी मनसा, हम आपके साथ में हैं। तब जाकर के धन अंतराय बहुत जल्दी बन जाता। बहुत से इसमें दिए हुए हैं, दूसरे का कोई सत्कार कर रहा हो उसको रोक देना, बताओ उसको तो सत्कार करने की भावना थी, अतिथि है, सत्कार कर रहे थे, अरे काय को कर रहे तुम, ऐसे तो बहुत आती रहती है, ऐसा रोक दिया। तो कुछ कारणों पर आपको बता दिया, दान की भावना होते हुए भी किसी को रोक देना, किसी को किसी चीज का लाभ हो रहा है उसमें बाधा डाल देना, भोग उपभोग की सामग्री में बाधा डाल देना, दूसरे के वैभव को देख करके और मन ही मन भीतर भीतर ईर्ष्या करना, ये भी अपने भोग उपभोग के अंतराय का कारण। अरे दूसरे को भोग विलास की सामग्री मिली, आपको का तकलीफ है? हाँ, उसको उसके अपने पुराने पुण्य के उदय से मिली है, अरे ये तो बड़े आदमी हैं, सो भैया उनके बहुत है, मनो हमका कछु कम है का। अरे आप उनकी प्रशंसा ही नहीं कर पा रहे, अगर उनने यश वैभव पाया है तो किसी पुण्य के उदय से ही पाया होगा। अब भले ही वे वर्तमान में बेईमानी करें सो करें अपनखों का, लेकिन दूसरे, इसमें लिखा है दूसरे के यश वैभव विभव समृद्धि विस्मया, दूसरे के वैभव यश को देख करके कभी भी मन के अंदर कलुषता नहीं लाना, नहीं तो आपके भी भोग और उपभोग की सामग्री अगले बार नहीं मिलेगी। ये चीज हमेशा अपने को ध्यान में नहीं रहती है, अज्ञानता की वजह से अपन भूल जाते हैं। बहुत सारी इस तरह की चीजें दी हुई हैं, धर्म करने से रोकना, ये सब दीनहीन व्यक्ति को दान देते हैं तो लोग रोक देते कि अरे काय को दान दे रहे हैं इनके लिए, ये थोड़ी ये तो अभी काम कर सकते हैं, तो कमाने के योग्य हैं। नहीं भैया, अगर मन में करुणा आ गई है तो बिना देखे और दे देना चाहिए। अपने अपन ने तो अच्छा मान के दिया है, आप उसका चाहे जो उपयोग करो दुरुपयोग करो आप जानो, हमारा तो हमारे मन में करुणा का भाव था, हमने तो दे दिया, हमारे पास जो वस्तु थी हमारे काम की नहीं है उसको हम दूसरे के उपयोग में आती है तो भी देने से रोक लेते, पड़ी रहेगी घर में हजारों चीजें लेकिन दूसरे को देने के लिए मन ही नहीं बनेगा, तो अगले बार अपन को फिर वो चीज भी प्राप्त नहीं होगी। इस तरह से बहुत सारी चीजें इसमें दी हैं, किसी के धर्म ध्यान में भी बाधा डालना। अब सुबह नहीं तो गए थे प्रवचनों में, अब का समझा को दिन दिन भर जाते रहे, कहा है जो घर को काम सोई है, अब बताओ उसके तो मैंने धर्म ध्यान करने की इच्छा है कि हम जावें, लेकिन अपन ने उसको इस तरह से रोक दिया। व्रत नियम लेने से रोक देना, अरे क्या रखा हुआ है व्रत नियम इत्यादि, ये बात अलग है कि बड़े व्रत ले रहा है तो अपन उसको समझाते कि देखो पहले छोटा वाला लेके देखो, हम भी कह देते हैं, ये अलग बात है ये, लेकिन उसको उस व्रत से विचलित ही कर देना तो दूसरे के धर्म ध्यान में बाधा डालेंगे। और भी बहुत से उपाय हैं धर्म ध्यान में बाधा डालने के, जैसे कि घर में रात्रि भोजन का त्याग कर दिया किसी ने और मान लो बहू ने किया, तो अब क्या करते हैं उसको रात्रि भोजन के, हम तो रात में खाएंगे, अब आप रात में खाओगे तो उसके लिए आपके बाद खाना पड़ेगा, उसका रात्रि भोजन का त्याग आपके वजह से टूट गया, ये सब जो है पाप का, आपने तो स्वयं खाया ही और आपके वजह से परिवार जन भी जो है रात में खाने के लिए मजबूर हो गए, तो समझिएगा आपने उन सब के में अंतराय डाला है धर्म ध्यान में। अब अगले बार आपको भी अपने धर्म ध्यान में ऐसे ही, जब तो अपन देखते हैं कई लोग कहते हैं कि महाराज हमारी तो बहुत भावना हो, लेकिन पता नहीं ऐसा आ जाता है कि कोई ना कोई बाधा आ जाती और हम कर ही नहीं पाते। महाराज हम बहुत समय से सोच रहे रिजर्वेशन हो जा शिखर जी को, जा ही नहीं पाते, अब जा कैसे प्यो, पहले तो दूसरे की ऐसी निंदा करी है धर्म ध्यान में बाधा डाली, सबका शिखर जी जा प्यो, खूब पैसा है सब बातें हैं लेकिन नहीं, भाव भी है कि जाऊं लेकिन निमित्त नहीं मिलेगा, कोई ना कोई बाधा आ जाएगी, डॉक्टर मना कर देगा कि अभी नहीं जा सकते, अभी हाई ब्लड प्रेशर है, अभी फलाना है, जब भी एक व्यक्ति अभी है उनके दर्शन हो पाए हैं, अभी बंबई के थे वो, 5-7 साल से कितनी बार हर साल 10 दफे रिजर्वेशन करवा चुकते हैं, और जब जब रिजर्वेशन होता है उसके एक दिन पहले जिस तरह की स्थिति बनती है वो कहते कि हम दंग रह जाते, सोच नहीं सकते कि ऐसी स्थिति बनेगी, और जाना आना सब कैंसिल, टिकट कैंसिल, साल में 10 बार 7 साल तक, अभी इस बार जो है आशीर्वाद लेके अभी वंदना हुई उनकी, जब वो कर्म कट गए इतने दिन में, बताइए ऐसे कर्म अपन बांध लेते, भैया दूसरा कोई धर्म ध्यान करे तो उसकी तो प्रशंसा ही करना और उसको उत्साहित करना कि हाँ बढ़िया करो, दान दो। ये सब चीजें अपन नहीं दे पा रहे हैं तो दूसरा दे रहा, तो अपन को क्या तकलीफ है उसके समर्थन करने में। निषेध नहीं करना चाहिए भली चीजों का, नहीं तो अपने स्वयं के लिए अंतराय कर्म बनता है। अपन ने इस तरह से आठ प्रकार के ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये आठ कर्म हैं। इनकी 148 प्रकृतियां हैं जो कि जीव को निरंतर यहाँ बंधती रहती हैं। अपन ने समझ लिया कि कौन से भावों से कौन सा कर्म बंधता है, अब अपने ऊपर निर्भर है कि अपन कैसे कर्म बांधना चाहते हैं और कैसे कर्म नहीं बांधना चाहते हैं। खोटे कर्म तो कोई नहीं बांधना चाहता, लेकिन खोटे कर्म कैसे बंधते हैं उसकी अज्ञानता की वजह से, या कि जानबूझ करके भी खोटे कर्म बांधने की कोई क्रिया करे तो फिर उसके लिए जानना भी कोई मायने नहीं रखता है। सबको मालूम है कि किन चीजों से हमारे पाप बंधता है, किन से हमारे धर्म होता है, तो ऐसा मालूम होने पर अपना कर्तव्य है कि धर्म में अपनी प्रवृत्ति हो और पाप कार्यों से अपन बचते रहें, तभी अपना कर्म सिद्धांत। नहीं तो सब जानो, मैंने क्या कहते कि रात भर पीसो और पारी में उठा लो, मतलब इतनी तो मेहनत करी और उसके बाद कुछ लाभ नहीं मिला, तो इतना अपन ने जानकारी हासिल करी, अपन के जीवन में इतना ज्ञान आ गया, अब उस ज्ञान का सदुपयोग कर लेना चाहिए कि हमें किस तरह अपने जीवन को बनाना, इसी भावना के साथ कि हम सब अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अच्छे कर्म करें। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्व का चिंतन करते हो, समतारस पाल किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां, दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अविनश्वर मणिया, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम, मिथ्या तम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर भास वेखो मानु शिव कानी है, अनुभव बताए वेखो जीवों के जताए वेखो काबू न सताए वेखो मुखे उरे आनी है, स्वामी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो दो ए दिन वाली भारती तो जपो दिन रहन जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख जैन कुले जिन ग्रहे मुनि राज महम
यदे ओम निकल पूजे करुणा श्री क्षमासागर जी महाराज के पावन पुण्य चरणों में ओम निकल पूजे करुणा श्री भवसागर जी महाराज के पावन पुण्य चरणों में अनंत प्राप्त है अनंत रूप की स्वाहा।
Ah! सेवा खानी है, चाहूंगा